सर्वोच्च प्रमाण। तो यहाँ पर फिर से ये कपड़ों से तुलना की गई है। तो हम लोग नए कपड़े कैसे पहनते हैं, मतलब कैसे प्राप्त करते हैं, उसके अनुसार हम लोग इस उदाहरण को समझेंगे। तो ये भौतिक जगत क्या हो जाता है, एक कपड़े की दुकान के समान है। तो माया शक्ति टेलर है और हम लोग कुछ धन देकर हम लोग उसको स्वीकार प्राप्त करते हैं। वो धन क्या है पता है, धन क्या है, हमारे कर्म, कर्म की जो मूल्य देकर हम लोग उसको खरीदते हैं। और अलग अलग प्रकार के, अलग वैरायटी के अलग अलग वस्त्र क्या क्या है पता है, वो कैसे बनते हैं, वो अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। वो तीन गुणों से ये सब विविधताएं आते हैं इस भौतिक जगत में। तो तीन गुण क्या करते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं इस जगत में, है कि नहीं। किसी का कॉलर ऐसे होता है, किसी का आजकल अलग अलग प्रकार के आते हैं ना, जीन्स वगैरह आते हैं। सब तमोगुण का लक्षण है, ये तमोगुण से बना हुआ डिजाइन है आजकल। सतोगुण मतलब आप जो लोगों ने कहना है वो सतोगुण है। तो ऐसे हम लोग लेते हैं। और दूसरा चीज हमें समझना चाहिए कि जैसे एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग कपड़े सिला जाता है, वैसे ही हमारे पिछले जीवन के कर्म के अनुसार, हमारे इच्छाओं के, हमारा भाव के अनुसार अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो और दूसरा चीज, और एक चीज हमें समझना है कि इससे हमें समझ में आता है कि रूप भी है, आत्मा के लिए रूप भी है। लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति ने जो बना हुआ जो रूप है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर आधारित होता है। और सूक्ष्म शरीर चेतना के ऊपर आधारित है। चेतना जैसे जैसे हम लोग चेतना बनाते हैं अंतिम समय तक, तो उसके अनुसार सूक्ष्म शरीर बनता है। वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर ये स्थूल शरीर को सिलाया जाता है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, वो अंदर के कपड़े हैं। हम लोग अंदर भी कुछ कपड़े पहनते हैं, बाहर भी कुछ पहनते हैं। तो अंदर के कपड़े ये सूक्ष्म शरीर है, बाहर के कपड़े स्थूल शरीर है। और भगवान कैसे ये सूक्ष्म शरीर बनता है, भगवद गीता के उस श्लोक में बताया, यम यम वापि स्मरण भाव तंते कलेवरम तम तम ये वैदिकम देय सदा तद्भाव भावित। तो आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में ऐसे कह रहे हैं। तो जैसे हम लोग स्मरण करते हैं, या हमारा चेतना क्या होता है मृत्यु के समय पर, इसको और विस्तार से तीसरे स्तंभ में भी वर्णन आता है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और 15वें अध्याय में भी वर्णन आता है, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठानम मनश्चाहम विषयानुत सेवते। तो श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम च, हम लोग देखने की इंद्रिया, सुनने की इंद्रिया, स्पर्श करने की इंद्रिया, रस को आस्वादन करने की इंद्रिया, ग्रहण नासिका ग्रह, अधिष्ठान मनश्चा, इसके केंद्र क्या है, मन है। तो जैसे ये पांव होता है, इसके इर्द गिर्द ये पांच उंगलियां होते हैं, ऐसे ही केंद्र क्या है, मन है, उसके इर्द गिर्द ये पांच इंद्रियां होते हैं। तो मन केंद्र होता है। विषयानुप सेवते, एक और शरीर को धारण करके विषयों को इन मन और इंद्रियों के द्वारा उसको आना वो करने के लिए जीवात्मा कोशिश करता है। और ये एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर में जाने की जो व्यवस्था है वो परमात्मा के द्वारा होता है। तो इस श्लोक में भी हम लोगों ने देखा, तीसरे स्कंध में होता है, कौन सा श्लोक किसी को पता है? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देखो प्रपत्तये, दैव नेत्र कर्म के अनुसार दैव के मार्गदर्शन में, दैव मतलब अल्टीमेटली वो परमात्मा, उनके मार्गदर्शन में जीव अलग अलग शरीर धारण करता। तो इसको श्री प्रभुपाद यहां पर सुमुंडक उपनिषद और श्वेतस्वर उपनिषद से उल्लेख करते हुए कह रहे, समान वृक्षे पुरुषों निमग्न निशाय शोचित शोचति ईह्यमानः दुष्टं यदा पश्यन् त्यन्याम् अन्यमीशस्य महिमा नमिति वीतशोकः। तो समान वृक्षे पुरुषों निमग्न, तो पुरुषों निमग्न दो पुरुष एक ही वृक्ष, वृक्ष ये शरीर के वृक्ष में, वृक्ष के शाखा में बैठे हैं, जैसे दो पक्षी बैठते हैं। तो एक पक्षी क्या कर रहा है, उस वृक्ष के अलग अलग फल खा रहा है, कभी वो फल मीठा होता है कभी कड़वा होता है। तो उन फलों को, वो मीठा और कड़वा फल क्या है, वो अच्छे और बुरे कर्म का फल है। हम लोग जिस इस बौद्धिक जगत में जो हम लोग आस्वादन करने के लिए, भोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण चिंता तथा विषाद में वो मग्न है। लेकिन वहां उनके साथ दूसरा एक बैठे है, वो सिर्फ उनको देख रहे हैं। तो और यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर अमुख उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जानने जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो इस भौतिक जगत में शरीर बदलने का क्या, शरीर बदलने का कारण क्या है? हम लोग वो जो परमात्मा है उनसे बहिर्मुख हो गए, हमारे मुंह को मोड़ लिया है हम लोगों ने। तो वो इस भौतिक जगत में अलग अलग शरीर को बदलने का, वस्त्रों को बदलने का कारण है। तो कृष्ण बहिर्मुख हो गया, भोग वांछा करी निकटस्थ माया हारे झपटी अगरी। सो कृष्ण बहिर्मुख, वी हैव बिकम टर्न्ड अवर फेस अगेंस्ट कृष्ण। So, और इस भोग वांछा करे, इस भौतिक जगत में भोग वांछा कर रहे, भोग की इच्छा, भोग करने के लिए प्रयास कर रहे। तो लेकिन हम लोगों को इस भौतिक जगत में खट्टे और मीठे फल मिलेंगे, कड़वे और है ना मीठे फल मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब कड़वे ही होते हैं, तथाकथित वो मीठा मतलब वो तथाकथित है, वास्तव में नहीं। तो माया हम लोगों को झपट लेती है, फिर हम नजदीकी रहते हैं, तो फिर हम लोगों को इस वस्त्रों की बदलने का तकलीफ से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को फिर से भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। जब तुरंत ही भगवान की ओर मोड़ना चाहते हैं तो हमें उनको वो इससे मुक्त कर देते। क्यों हमें वो बाध्य नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्वतंत्रता देते हम लोगों को। तो हम अपने स्वतंत्रता को उपयोग करके चाहे उनकी ओर देख सकते हैं क्या, नहीं तो उनसे बहिर्मुख हो सकते हैं। तो फिर से भगवान इस श्लोक से क्या कह रहे हो, आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग द्रोण और भीष्म विशेष करके सभी उनका शरीर जीर्ण हो गया, अभी फिर से वो नया शरीर लेंगे, स्वीकार करेंगे, इसलिए इसके कारण ये अपना कर्तव्य है या धर्म है उसको पालन करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए, ऐसे बता रहे। और विशेष करके वीर शोक है, यहाँ पर वो जो शेखर मंदिर को उपनिषद से उल्लेख किया गया है, तो अर्जुन शोक में हो गए थे, तो क्योंकि उन्होंने भी भगवान के विरुद्ध बैरूप हुए, इसके कारण भगवान कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, बड़ी उसको बड़ी अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन है। नियम है, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ काल्पनिक धारणा है।
आधुनिक विज्ञान जन सब जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति आधुनिक की व्याख्या भी नहीं करता।
वो कॉर्डियोलॉजिस्ट कौन था, वो आत्म साक्षात्कार विज्ञान में है ना, कार्डियोलॉजिस्ट आत्म साक्षात्कार विज्ञान, वो संशोधन कर रहे थे, उनका रिपोर्ट आ गया, कविता भी नहीं उनको खत लिखते हैं आत्मा को वर्णन करते हुए। वो कार्डियोलॉजिस्ट हृदय का वो क्या करते थे, ऑपरेशन करते थे वो, तो उन्होंने कई सारे ऐसे ऑपरेशन देखा, कई सारे ऐसे मृत्यु देखा होगा, तो उनको समझ में नहीं आया क्या होता है, सडनली सब कुछ वो आंखों में जो तेज है वो कम हो जाता है, शरीर में जो तेज है वो कम हो जाता है, क्या है, सब कुछ ठीक है, तो हृदय ठीक है, सब कुछ ठीक है, और कहाँ से ये शक्ति हृदय की, वो लोग जानते हैं हृदय के जो विभाग है वहां से ही सभी शक्ति आता है शरीर को, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से आता है। इसको तो कोई नकार नहीं सकते है ना, वो तो हम लोग देख रहे हैं।
वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थान अंतरित हो जाता है, इसकी व्याख्या एक दूसरे श्लोक में दूरी 10-13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है, परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति इस तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। दोनों पक्षी समान रूप वाले हैं, इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर बैठे
शरीर को एक वृक्ष से तुलना किया गया, तो पक्षी होते हैं ना, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष ऐसे होते जाते रहते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा जाते रहता
है। जो ही वो दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, इस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, क्यों ही
समान यद्यपि
दोनों पक्षी एक
ही
वृक्ष पर बैठे हैं,
इसको नहीं नहीं करना ब्रह्मास्त्र तो बहुत ही खतरनाक अस्त्र है, सबसे बड़ा खतरनाक। सभी लोगों को उसको चलाने के लिए नहीं आता था, कोई कोई चलाने के लिए आता था लेकिन उसको वापस लेने के लिए नहीं आता था। जैसे हम लोग पतन स्कंद में देखते हैं अश्वत्थामा उसको छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर, लेकिन उसको वापस लेने के लिए उसके पास शक्ति नहीं था, फिर भगवान कृष्ण ने उसको खत्म कर दिया। तो और इसका एक और विशेषता है कि वो सिर्फ जिस लक्ष्य को मारा गया है उसी लक्ष्य को जाके वो मारते थे। वो ऐसा नहीं कि मासूम लोगों के ऊपर एक है ना सोते हुए मासूम लोगों के ऊपर एक बॉम्ब डाल दिया, ऐसा नहीं होता था उस समय। तो ये इसका विशेषता है। तो इन सब चीजों से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे है? दो चीज समझ सकते हैं, वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति बहुत ही प्रगतिशील था। आजकल हम लोग दुनिया में ऐसे सब जगह यहाँ पर आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति के विरुद्ध कि यह बहुत पिछले अनसिविलाइज्ड है, बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है, पुराना है, प्रगति नहीं हुआ है, सो प्रगतिशील नहीं है, ऐसे सब जगह फैलाया जा रहा है। तो जो भी पाश्चात्य देश में जाके पढ़ाई करके जो आ जाते हैं वो सिर्फ भारत के संस्कृति को निंदा करते रहते हैं। और आजकल शिक्षा भी क्या है, वो पाश्चात्य देश से ही आया हो शिक्षण, वहां पर भी ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी भारतीय है वो अच्छा नहीं है, ऐसे वेस्ट इज बेस्ट, या अमेरिका में जो जो अच्छा होता है वही सही है। तो और सबको सब जगह पूरा दुनिया में ऐसे क्या है प्रचार किया जा रहा है कि अभी हम लोग बहुत ही प्रगतिशील है, लेकिन वास्तव में पहले जमाने में बहुत ही प्रगतिशील थे। हम लोग कल्पना भी कर नहीं कर सकते कैसे वो जीवन शैली था, कैसे उनके अंदर कलाएं थे, कैसे उनके अंदर विज्ञान था। वैदिक ज्ञान क्या है, वो परिपूर्ण है वो। सो धनुर्विद्या भी सो वेद का एक अंग है, उपांग है, उपांग बोलते हैं धनुर्विद्या आयुर्वेद, धनुर्वेद आयुर्वेद। सो ये दोनों और एक तो ये उपांग वेदों के अंग उपांग बोला जाता है। तो वेदांग छह वेदांग होते हैं और ये तीन उपांग होते हैं, ठीक है मन में है नहीं आ रहा। तो उपांग जो होते हैं इनको ये तो वेद का जो ज्ञान है परिपूर्ण है, वो जो भी चाहिए हमें हम लोगों को इसको भौतिक हो या आध्यात्मिक हो सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। तो इसलिए वेदों को कल्पतरु कहा गया है, निगम कल्पतरु, निगम निगम मतलब जो ऊपर से नीचे आता है, वेद का जो ज्ञान है ऊपर से नीचे आता है, अंत में भगवान से ही आता है वेद का ज्ञान। सो निगम कल्पतरु, कल्पतरु मतलब ऐसा एक वृक्ष के समान है जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो इच्छा करते हैं वो प्राप्त हो जाए। सो आजकल जो भी अलग अलग ज्ञान का जो क्षेत्र है, शिक्षण क्षेत्र है, जो भी उसमें पढ़ाया जाता है उस वो सब उपलब्ध है वेदों में। जैसे एक उदाहरण, पहले जमाने में मेटलर्जी, आजकल है ना मेटलर्जी मतलब अलग अलग धातुओं को वो अध्ययन करते हैं। तो पहले जमाने में वो लोग कैसे सोना बनाना चाहिए उनको पता था, है ना, वो मणिर या तो वो श्लोक है ना, उस श्लोक में खांच बेल मेटल, खांच और मर्क्यूरी दोनों मिलाकर अलग अलग सूत्रों के द्वारा वो लोग सोना बनाते थे। बस ये सुना सुन लोग सुनते हैं तो बहुत उत्सुक हो जाएंगे ना, वो आज भी इसको सीखना चाहे करके लेकिन उसके लिए योग्यता का जरूरत होता है, उसके लिए योग्यता का जरूरत होता है, ऐसे कृत्रिम जीवन में उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो उसके अलग जीवन शैली चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पुण्य का जरूरत होता है, पाइटी। तो ऐसे ऐसे जो पापी जीवन बिताने से उसका ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं और कई सारे चीज पहले जमाने में बड़े बड़े मंदिर बांधते थे, वो कैसे है, वो आर्किटेक्चर कैसा था, वो शिल्पकला शिल्प शास्त्र भी था ना वेदों में, सो कैसे शिल्पकला था वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कर्नाटक में 500 वर्ष पूर्व 600 जब चैतन्य महाप्रभु थे तभी उस मंदिर को बनाया गया था। तो एक राजा थे, उन्होंने मुसलमानों को हराने के बाद उन्होंने वो मां विजयनगर में सो उन्होंने वो मंदिर बांधा, विजय विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल विट्ठल ना भगवान का एक रूप है ना। सो महाराष्ट्र में वो पूजा करते, द्वारकाधीश है वो, तो विजय विट्ठल मतलब जो विजय प्राप्त होने के कारण उनको विजय विट्ठल नाम दिया, तो उनकी कृपा से हम लोग मुसलमानों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया ऐसे। तो उस मंदिर में आप देखेंगे तो वो जो स्तंभ थे, खंभे थे, तो हर एक खंभे को आप ऐसे थोड़ा इसको उसको उसके ऊपर मारेंगे तो लकड़ियाँ लेकर अलग अलग शब्द वो आता था, वो अलग अलग संगीत के जो स्वर है वो निकलते थे वहाँ, तो 1 किलोमीटर तक वो सुनाई देता। जब भगवान का पूजा होता था वो बजाते थे अलग अलग, तो अभी भी था वो, अभी 2-3 साल पहले वो सब गिर गया अभी, तो क्योंकि बाद में बहुत सारे मुसलमानों ने उसके ऊपर आक्रमण किया। तो बहुत जब हम लोग भी जाया करते थे तभी वो बाहर तो नहीं आता था लेकिन खाड़ लगा के सुनेंगे तो सुनाई देता था। तो क्या है तो ये सब विज्ञान बहुत प्रगतिशील था और इतने बड़े बड़े मंदिर बांधे हैं। उस समय तो ये बड़ा बुलडोजर क्रेन वगैरह नहीं हुआ अच्छे है ना, वो कैसे बनाया उन्होंने और पत्थर को कैसे तोड़ते थे वो लोग, वो एक बिंदु रहता है जहां पर उसको तोड़ दिया तो जैसा चाहिए आपको वैसा खट जाता था। वो सब उनको पत्थर तोड़ने वालों को भी इतना ज्ञान था। तो ये सब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बड़ा ये पत्थर को ना बड़ा मशीन लेके उसको काटो या ऐसा उस जरूरत नहीं था, इतना वो आवाज नरकी आवाज करते हुए वो मशीन काटता है वो। तो उनको पता था कहाँ पर क्या मारना चाहिए और कैसे उसको काटना चाहिए सब पता था। तो ये सब बहुत विज्ञान है, अभी सब लोग भूल गए उसको, अभी ये सभी तकनीकी की प्रगति के कारण सब नष्ट हो गया, लोग इसको प्रगति मानते हैं, एक्चुअली ये प्रगति नहीं अधोगति है। यानी तो अलग अलग प्रकार के अस्त्र भी हुआ करते थे, तो कोई भी अस्त्र लीजिए वो आत्मा को काट नहीं सकता है, वो आत्मा को जला नहीं सकती है, जला नहीं सकते हैं, उसको सुखा नहीं सकती है या उसको भिगो नहीं सकते थे, क्योंकि आत्मा एक भौतिक वस्तु नहीं है। तो भौतिक वस्तु को काटा जा सकता है, उसको क्या कर दिया जा सकता है, उसको जलाया जा सकता है, उसको सुखाया जा सकता है, उसको भिगाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। तो जब शरीर को मृत्यु हो जाता है, शरीर को हम लोग जला देते हैं लेकिन आत्मा वो वहां पर नहीं रहता, वहां पर है तो भी वो जलता नहीं। तो ये हमें जानना चाहिए। और यहाँ पर होता पॉइंट कि नैनम चिंतन भी उसको काटा नहीं जा सकता है। हम लोग एकात्मवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर एक और धारणा एकात्मवाद का धारणा प्रॉपर खंडन कर रहे हैं तात्पर्य में। तो लोग जो मायावादी वो लोग कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है और वो विभाजित होकर क्या हो गया, अलग अलग जीवों के रूप में प्रकट हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नैनम छिंदन थी, उसका कभी उसको काट नहीं दिया सकता, उसको विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे एक हम लोग पेपर ले लेते हैं, उसको हम लोग काट लिया तो क्या हो जाता है, तो वो विभाजित हो जाता है अलग अलग पेपर में। तो वैसे जीवात्मा को नहीं किया जाता, इसलिए उसको ये जो एकात्मा वाला है उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते है। तो भगवद गीता और वराह पुराण में जीवन को भगवान के अंश कहा गया। अंश का अर्थ ये नहीं है कि वो एक समय पर लिखी थे और वो अलग अलग हो गए, वो विभाजित हो गए उसका। इसलिए वहां पर क्या है, शाश्वत सनातन शब्द का उपयोग किया गया। ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, तो सनातन मतलब शाश्वत रूप से वो भगवान के अंश है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कैसे वो दोनों साथ में शाश्वत रूप में रह सकते हैं, फिर भी वो भगवान के अंश है। तो इसको पढ़िए, यू कैन रीड सारे हथियार जोर से पढ़िए।
सारे हथियार परिवार आग्नेयास्त्र रक्षा कवच चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अंतर मिट्टी जल वायु आकाश आदि के सभी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की आग्नेयास्त्रों में की जाते हैं, किंतु पूर्व काल में विभिन्न काफी तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का तो पता ही नहीं। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड नहीं किया जा सकता है, ना इन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका श्रृंगार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते जीव किस प्रकार अपने ज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ, अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति का आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों के जीवों को विलग करना संभव था, क्योंकि सारे जीव परमात्मा से विलग हो गए अंश, क्योंकि वे सनातन परमात्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। अब इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के सूर्य अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान है। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद्गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होने पर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा जीव को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गए, किंतु फिर भी किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं।
तो यहाँ पर एक और तर्क दे रहे थे उपाद कि हम सब लोग एक ही आत्मा है, तो अर्जुन तो मुक्त हो गए भगवत गीता सुनकर, फिर हम लोग क्यों मुक्त नहीं हुए, है ना। हम एक ही आत्मा है तो हमें हम लोग भी मुक्त होना चाहिए ना, एक ही साथ में। तो वैसे क्यों नहीं हुआ, वो दूसरा तर्क दे रहे। पहला है कि उसको भेद नहीं कर सकते हैं, दूसरा कि इसको लिख लीजिए उसको, है ना, एकात्मवाद के लिए ये दो तीन यहाँ पर बता रहे थे ऊपर। और सनातन रूप से वेद शास्त्रों में भगवद गीता और वराह पुराण में ऐसे बताया गया है कि सनातन रूप से जीवात्मा अंश है भगवान के, ऐसे नहीं कि वो भेद हो गया, क्योंकि भेद नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता। पहला है आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता है, दूसरा है भगवद्गीता और वराह पुराण जैसे शास्त्रों में सब जगह वो सनातन करके समझाया गया है, तीसरा है कि हम एक ही आत्मा है। तो जब भगवान अर्जुन भगवान से भगवद्गीता सुनकर मुक्त होने के बाद हम सब लोग भी मुक्त होना चाहिए, क्यों हुए नहीं। तो अगला श्लोक अच्छेद्योऽयं मदात्मोऽयं अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतः स्थानोरचलोऽयं सनातनः या आत्मा अखंडीकृता अगुण अगुणशील अगुणशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। ये रिपीटेशन है पिछले श्लोक से पहले के अखंडित अगुण अगोलनशील उसको न जलाया जा सकता है नहीं सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत उसको नित्य जो नित्य शाश्वत हो पुराण। तो फिर यहां पर सर्वगत शब्द आता है तो ये उसको जलाया नहीं जा सकता उसमें भी ये क्या है अग्नि में भी क्या हो सकते हैं जीवात्माएं हो सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए पहले जमाने में ऐसे होता था ना पहले लोग करते थे आपको पानी को स्टेरिलाइजेशन क्या बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन पानी को उसको बॉईल करके पीना चाहिए नहीं तो बैक्टीरिया आके आपको बहुत रोगाणु आएंगे आपके शरीर में। लेकिन कई सारे बैक्टीरिया फायर बैक्टीरिया वगैरह बॉयल करने के बाद भी वो मरते नहीं क्योंकि जीवात्मा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रह सकते हैं। बोलते हैं ना सूरज में तापमान कितना है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तो उस तापमान में भी वो रह सकते हैं। तो ये उसका अर्थ है न जलाया जा या ट्री फ्रीजर तो वहां पर जो ध्रुव उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव जहां पर सिर्फ बर्फ है वहां पर भी जीवात्मा है जीव तो वो कहीं भी रह सकता है। शरीर अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग शरीर होते हैं लेकिन जीवात्मा तो उसको कुछ लेना देना भौतिक प्रकृति या भौतिक स्थितियों से कुछ लेना देना कौन से भी वातावरण में रह सकता है इसलिए उसको सर्वगता भी कहा गया। सर्वगता मतलब कहीं भी रह सकता है वो ऑल पर्वेडिंग मतलब सर्वव्यापी है इसका अर्थ है कि सब जगह विद्यमान रह सकता है जीवात्मा है अलग अलग जगह पर। तो इसके आधार पर तोता यहां पर बोल रहे हैं कि हम लोग पिछले श्लोक में हम लोग 22वां श्लोक में चर्चा किया कि ये शरीर अलग अलग प्रकार के वस्त्र है तो कितने वस्त्र प्रकार के डिजाइन है किसी को पता है वस्त्र कितने प्रकार के डिजाइन है 84 लाख प्रकार के डिजाइन है। तो ये सभी डिजाइन इस पृथ्वी का ही नहीं सब जगह और वो विस्तारित हुए ऊंचे लोक में नीचे लोक में सब जगह ये विद्यमान है। इसलिए जीवात्मा सब जगह रहता है ऐसा नहीं कि सर्वगत मतलब इस हमारे पृथ्वी के ऊपर भी जीवात्मा है। आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिकों के अनुसार वो लोग छोटे बच्चे को सिखाते हैं अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज देयर आर लिविंग एंटिटीज हियर मार्स इज अ रेड प्लैनेट तो ये सब सिखाते हैं यहां पर भगवान लेकिन क्या बोल रहे हैं सर्वगत सब जगह विद्यमान है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग चंद्रमा में गए वहां पर हम लोग कोई जीव को देखा नहीं है प्रति क्या, अभी हम लोग मार्स में ढूंढ रहे, मंगल ग्रह में ढूंढ रहे हैं जीव है क्या, ये एक आप साइकोलॉजिकली देखेंगे तो एक इस सच्चे ईगो ईगो सेंट्रिक, हम ही बहुत श्रेष्ठ है, पूरा ब्रह्मांड में हम ही विद्यमान है, और कई जगह पर जीव विद्यमान नहीं है, तो कैसे देखो ये। पहला चीज है, वो लोग समझ नहीं पाते कि भगवान ने सृष्टि किया, भगवान सृष्टि करने के बाद सभी लोगों को सिर्फ इस लोक में वो उनको कुछ ठीक हो गया और इसमें जीव डाल दिया उन्होंने, ऐसे धारणा है, वो उनको कुछ पता नहीं था कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए, सडनली यहाँ पर जीव का सृष्टि हो गया। तो सब जगह विद्यमान है, प्रभुपाद उसके बारे में बात करते थे, चंद्रमा के ऊपर जीव नहीं है, जब ऐसे कहा उन्होंने, मैं किसी दूसरे ग्रह से आके ये सारा रेगिस्तान या थार रेगिस्तान में, मैं जानते हैं ना थार रेगिस्तान, वो वहां पर है ना राजस्थान गुजरात के बॉर्डर, तो वहां पर है वो सहारा वो अफ्रीका में है या मिडिल ईस्ट वगैरह, तो बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो सहारा रेगिस्तान, तो वहां आके कोई उतर गया और उतर के बोलेगा कि यहाँ पर कोई नहीं, इसके पहले प्रभुपाद एक और बात कर, वो लोग क्यों वहां पर जीव नहीं है बोलते हैं, क्योंकि वहां पर पानी नहीं है बोलते हैं, क्योंकि इस जगत इस धरती पर जीव की विद्यमान के लिए उपस्थिति के लिए जल की आवश्यकता होता है या ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, इसके कारण वो नहीं है तो वहां पर भी जीव नहीं हो सकता, ऐसे उनका कारण। प्रभुपाद उसके लिए उदाहरण ये तर्क दिया कि आप दूसरे लोग से यहाँ पर उतर गए रेगिस्तान में और बोल दिया कि यहाँ पर पानी नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई जीव नहीं है, तो फिर उसके लिए उन्होंने तर्क वो बताते हैं कि नहीं, हमारे पास ऐसा मशीन है, हम लोगों ने क्या घुमा दिया उसको, हम पूरा है ना चंद्रमा के इर्द गिर्द घुमा दिया और देखा कि पानी है क्या है नहीं है, तो प्रभुपाद उसके लिए तर्क देते हैं कि पानी के रेगिस्तान में वो कैक्टस बोलते हैं ना, तो वो कैक्टस बिना पानी के उतर, इनफैक्ट जो भी अवेलेबल पानी है उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, उसके कारण उसके पत्ते के ऊपर वो कांटे उठते थे, वो क्या कांटे क्या करते हैं, वो जो भी पानी है उसको बाहर फेंक देता है, बिना पानी के यहाँ पर जीव है वहां पर। या दूसरा वो तर्क देने से, इस पृथ्वी पर अलग अलग परिस्थितियों में जीव विद्यमान है, जैसे जलचर है, हम लोग स्थल पर रहते हैं, और जो वायुमंडल में भी जीव है, सब जगह इस पृथ्वी पर सब जगह जीव है विद्यमान है, और हमारे उसकी जरूरतें अलग अलग होते हैं, जब हम लोग पानी में जाते हैं तो हम लोग वहां पर जीवित नहीं रह सकते क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है अलग है, लेकिन वो जो मछली होता है उसका जो जरूरत है अलग होता है, उसका ऑक्सीजन जरूरत और उसके पानी का जरूरत और हमारे पानी का जरूरत और हमारा वो अलग होता है, तो इस पृथ्वी पर भी अलग अलग वातावरण है, अलग अलग स्थितियां हैं, जहां पर जीव अस्तित्व में है तो उसको वही तर्क को हम लोग विस्तार करेंगे तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि दूसरे ग्रहों में भी जीव है। तो हमारे स्थितियों को दूसरे जगह लागू करना वो क्या है, वो मूर्खता है। जैसे हम लोग सोचेंगे कि हम लोग पानी में जाते हैं तो हम लोग कांपते हैं, हम लोग ऐसे कहेंगे कि मछली भी कांपते है पानी में करके, तो वो मूर्खता है। अपना स्थिति को दूसरों को लगाने का जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर ये सब चाहिए इसलिए ये नहीं है तो दूसरे ग्रह में जीव नहीं हो सकते, ये क्या मूर्खता है। तो इसको प्रभुपाद कुपमंडल को न्याय भी बोलते थे। कुपमंडल को न्याय मतलब वो कुएं में एक बहुत बड़ा डॉक्टर फ्रॉग था, डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, मेंढक था, मंडू का संस्कृत भाषा में मंडू कहते थे। तो मेंढक था और सभी अगर अन्य जो मेंढक थे उसको बहुत सम्मान देते थे क्योंकि बड़ा वो विद्वान था मंडू का। और एक बार छोटा मेंढक वो कुएं से बाहर कूद के बहुत समय के बाद वापस आया, तो ये डॉक्टर पाव ने उसको पूछा कहाँ गए थे। मैं वो क्या है अटलांटिक ओशन क्या बोल अटलांटिक महासागर में गया, तो ये क्या है वो पानी का बहुत बड़ा एक जलाशय है वो। तो फिर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, दो गुना बड़ा, तीन गुना बड़ा, चार गुना बड़ा, दस गुना बड़ा। तो ऐसे ही ये जो डॉक्टर पॉल है उसको मापने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने जो कुएं के अनुसार उसको भी मापने के लिए कोशिश कर रहा है। ये वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, अपने स्थितियों को दूसरे ग्रहों को लागू कर रहा है। तो नहीं, अलग अलग स्थिति है, ब्रह्मांड में अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग जीवों को वहां पर तो उसको स्थित करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए यहां पर भगवान क्या कर रहे, सर्वगत सब जगह विद्यमान है जीव जीवात्मा आत्मा, तो ऐसे कह रहे हैं, ये हमें समझना है। तो इसके अनुसार सूर्य मंडल में भी जीवात्मा है, कितना भी तापमान हो वहां पर भी जीवात्मा रह सकता है, कितना भी ठंडी हो, चंद्रमा में भी जीवात्मा है, सब जगह जीवात्मा। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो मशीन छोड़ के इधर उधर वो पानी को ढूंढो, उसको ढूंढो, इसको ढूंढो, उससे क्या फायदा होगा, है ना। तो पढ़िए इसको तात्पर्य को। और स्थान शब्द यहाँ पर है, सर्वगत के बाद में भगवान स्थान कह रहे हैं। तो स्थान हम लोगों ने चर्चा किया है, वो अपरिवर्तन है, छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में लेकिन आत्मा में वो परिवर्तन नहीं होता है। अचल अचल मीन्स जड, जड मीन्स दिस इज नॉट राइट इनमोवेबल नो वॉट इंग्लिश वॉट प्रॉपर हैज ट्रांसलेटेड इनमोवेबल अनचेंजेबल। ये इसका दूसरे अर्थ भी होते हैं स्थानों और अचल का, इसका स्वरूप क्या है वो नित्य है, वो भी उसका परिवर्तन बदलता नहीं, वो अर्थ होता है चला स्थानों का। समझ में आ गए, हमारा नित्य स्वरूप होता है। तो जीवात्मा का ही अलग उसका ही स्वरूप होता है नित्य, वो कभी बदलता नहीं। आध्यात्मिक जगत में पांच संबंध होते हैं ना, उसके अनुसार भगवान के साथ हमारा एक नित्य संबंध रहता है, तो उसका ही अलग रूप होता है आध्यात्मिक रूप। कोई बाल बाल हो सकते हैं, कोई गोभी हो सकते हैं, कोई नीचे माता पिता हो सकते हैं, कोई वहां पर वृक्ष हो सकते हैं, कोई गाय हो सकते हैं, कोई क्या है मोर हो सकते हैं वहां पर। भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचने के लिए, तो ऐसे स्वरूप नित्य होता है, उसको वो कभी बदलता नहीं, उसका स्थान चलो ठीक है। सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन, तो सनातन सनातन स्वरूप वाला, तो पढ़िए उसको तात्पर्य को। वो हो सकता है लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसके प्रभाव को देख सकते है ना, उसके प्रभाव को देख सकते हैं लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए इसको अव्यक्त कहा गया। तो क्यों अव्यक्त है ये, क्योंकि पहला चीज है वो सूक्ष्म है, दूसरा चीज है वो आध्यात्मिक वस्तु है, ये आध्यात्मिक चीज है, ये हमारे नेत्र जो है, हमारे इंद्रिया और नेत्र क्या है, भौतिक है, जड़ जड़ वस्तुओं से, ये चर्म चक्षु जड़ वस्तुओं से बना है, तो वो सिर्फ जड़ चीजों को देख सकता है, वो भी कुछ परिपूर्णता से सभी जड़ चीजों को भी नहीं देख सकता, तो आध्यात्मिक चीज को कैसे देख सकता है। तो हम लोग कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाए हैं, कितना भी उसका क्या है रेंज हो, फिर भी उसको हम लोग आत्मा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज है, हमारे जो नेत्र या हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उपकरण है, वो क्या है भौतिक है, वो भौतिक चीजों को ही पूरी तरह से नहीं देख सकते है, जो बहुत दूर चीज के दूर की चीज है या बहुत ही नजदीक चीज भी हम लोग देख नहीं सकते है ना, हमारा आईलेट दोनों अच्छा बोलते हैं उसको हल्के है ना, तो उसको ही हम लोग नहीं देख सकते, जो बहुत ही नजदीक है हमारे और बहुत दूर की चीज भी नहीं देख सकते, तो वैसे हम लोग आध्यात्मिक चीज को कभी देख नहीं सकते है, इसलिए उसको अदृश्य कहा गया है, अव्यक्त, और अव्यक्तोयम अचिंतोयम, ये अकल्पनीय हमारे कल्पना के बाहर है, इसका अर्थ है इसको समझ नहीं सकते, ये सब वर्णन हम लोगों ने सुना, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका कैसे हमें अनुभव नहीं, हालांकि तो भगवान तर्क से समझा रहे हैं हम लोग अच्छी तरह से, लॉजिक एंड रीजन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अचिंत्य, तो से आत्मा, अंततः इसको कैसे जाने जा सकता है, हम वेदों के द्वारा उनके ही जान सकते हैं, जैसे यहाँ भगवद गीता में दिया गया है उसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इसको जो भगवद गीता में या आत्मा वेदों में जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिया गया है उसके द्वारा अनुभव भी अभी भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अचिंत्य कहा गया है, अचिंत्य स्वाधिकार्य उच्यते, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, चर्चा किया। तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचित अर्हसि, तो ये आत्मा को जानते हैं, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये यह जानते हैं, इसको जानकर हमें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान यहाँ पर। तो शरीर एक संबंधित चीज है, कुछ है शरीर या शरीर संबंधी कोई चीज है, उसके कारण हमें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान हम बता रहे हैं। और ये यहाँ पर 25वां श्लोक में भगवान के जो आत्मा के ऊपर जो शिक्षा है, उपदेश है, यहाँ तक यहाँ रुकते हैं भगवान, और आगे भी एक दो श्लोक में कहेंगे फिर से, या लेकिन उसको सार में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी विषय बदल रहे, अभी इसको स्वीकार नहीं करते, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तो फिर भी आपको शोक करने का जरूरत है नहीं है। वो अलग अलग लोग जो आत्मा के स्वीकार नहीं करते उनके दर्शन को भगवान वर्णन करने वाले। और तो यहाँ पर एक और चीज हमें, मैंने उसको बताया सुबह कि बहुत सारा चीज यहाँ पर दोहराए गए हम बार बार, जैसे इस श्लोक में भी अधिकार उसमें कोई परिवर्तन अपरिवर्तनशील है, ऐसे कई सारे चीज नित्य सनातन अच्छेद्योयम अदाय, बहुत सारे चीज दोहराए गए बार 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 बार, तो 11वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक में। तो वो क्यों दोहराए गए, जब भी कोई चीज दोहराया जाता है वो गलती होता है व्याकरण के दृष्टिकोण से, और वो अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं है। जैसे मैं अभी प्रवचन दे रहा हूँ, बार बार एक ही वाक्य फिर से वही बोल रहा है, इसका अर्थ होता है कि इसको कुछ पता नहीं है या कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। लेकिन भगवान कृष्ण को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो जब भी अलग अलग जगह पर शास्त्रों में दोहराए गए चीज, वो इसलिए दोहराए गए ताकि उसके महत्व को हम लोग समझे, वो पहला चीज है उसका महत्व होता है, या वो महत्वपूर्ण चीज है ऐसे समझ जाए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हरे राम हरे रामैव केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा, केवल हरिनाम तीन बार रखा गया, इसको छोड़कर अन्य कोई चीज नहीं, इस कलियुग में अन्य उपाय नहीं, ऐसे कहा गया भरत नारद उपाय कुरान में। तो इसके तात्पर्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरितामृत में वर्णन करते हैं कि कर्म से ध्यान से या अष्टांग तीन बार जब कहा गया है अन्य कोई उपाय नहीं है, या हरे नाम कह गया कहा है, तो ज्ञान कर्म और योग से उसको हम लोग इस कलियुग में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे कहा। सिर्फ भक्ति योग से, और विशेष करके हरिनाम भक्ति योग में भी हरिनाम का उच्चारण करके ही हम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कहा। तो क्यों दोहराया गया वहां पर, उसके महत्ता को समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर आत्मा के बारे में अलग अलग चीज दोहराई गई, क्योंकि किसके लिए, उसकी महत्ता को समझाने के लिए, तो वो एक कारण है। और दूसरा चीज कारण है कि भगवान चाहते हैं कि हम कोई भी संशय बिना इसको समझे, आत्मा के ज्ञान को हमारे मन में और संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको बार बार समझा रहे, अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान समझा रहे। तो संशय बिना इसको समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ये सब चीज दोहराए।
जैसा
कि पहले कहा जा चुका है, नेक्स्ट टॉपिक 25वां श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म यंत्र के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा नहीं जा सकता। ये दृश्य जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, यदि ये प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है।
तो अनुभवगम्य चीज ना है ना, सत्य है अनुभवगम्य, तो इसको अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, साक्षात्कार किया जा सकता है। और
हमें अनेक बातें केवल कुछ प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी होते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप। परमात्मा अनंत है और अनुआत्मा अति सूक्ष्म, अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया। इसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है।
हरे कृष्ण, कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?
इसमें सनातन का अर्थ किया है सदैव एक साथ, उसमें आत्मा एक सी कैसे रहती है, मतलब माया में नहीं रहती?
नहीं नहीं, एक सी कैसे रहती है कि अचला हम वो तीनों शब्दों मिलाकर उसका शाश्वत स्वरूप होता है। मैंने बताया ना वो अर्थ होता है, उसका शाश्वत स्वरूप होता है। क्या अनुवाद दिया गया?
ये अनुवाद हमेशा वाक्य जो ये शाश्वत व्यापी अभिकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला
है। वही एक सा रहने वाला मतलब क्या है? उसका स्वरूप बदलता नहीं। भौतिक शरीर उसके चेतना के अनुसार भौतिक जगत में अलग अलग स्वरूप बदलते हैं, उसका शरीर बदलते हैं, लेकिन उसका जो नित्य स्वरूप होता है, इसलिए नित्य शब्द से ये वो लाइन शुरू होता है ना, नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन, वो नित्य रूप से एक ही स्वरूप होता है, ठीक है। या वो तो है कि हम लोग माया से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका मूल स्वरूप भी प्रभावित होता है। मूल स्वरूप नहीं होता, उससे चेतना का कारण अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। बहुत ही गलत है। आत्मा में स्वयं आत्मा में नहीं आता है विकार, आत्मा वो कभी बदलता नहीं, ठीक है। तो वो बदलता है तो फिर आध्यात्मिक कैसे होता है? उसका चेतन प्रभाव, चेतना प्रभावित हो सकता है। वो बहुत सारा, एक आत्मा है, फिर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तो इनके बीच में कैसे इंट्रैक्शन होता है? एक दूसरे से कुछ संबंधित नहीं है, क्योंकि एक अपराशक्ति है, दूसरा पराशक्ति है। तो वो संबंध को क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्म चीज इंटरेक्ट करते हैं, और वो सब परमात्मा के व्यवस्था से होता है। यू नो हाउ दैट इंटरेक्शन और सिंथेसिस टेक्स प्लेस बिटवीन हायर स्पिरिचुअल एनर्जी एंड लोअर मटेरियल एनर्जी, दे कैन नॉट मिक्स, राइट? बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट इन नेचर ऑल टुगेदर। तो वेरी सटल लगता है, लिंक वुड बी वेरी सटल। इसके कारण वास्तव में देर इज नो विकार ऑन होता है, नॉट यू नो मैटर कैनॉट टच आत्मा, असंगोयम पुरुष तो असंगोयम पुरुष मतलब इससे कुछ संबंध लेना देना नहीं है। अहंकार भी एक बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है। क्या है अहम, मैं भगवान के दास हूं लेकिन यहां पर ये इंद्रियों का दास सिर्फ वो जो धारणा है वो हमें ये दोनों को ये शरीर और चेतना को मतलब लिंक्स उसको जोड़ देते हैं। वो परमात्मा के व्यवस्था से होता है, वो उनको प्रेरणा देते हैं मतलब ज्ञान को लेकर हमारे कर्म के अनुसार। ठीक है, ऐसे बहुत सटल इंटरेक्शन होते थे। ठीक है, अंततः वो उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अलग है ये भी अलग है, उसमें कोई विकार नहीं आता। ठीक है, नहीं तो वो भी बहुत ही ठीक बन जाता था अपने लिए। उसका क्या आध्यात्मिक करा जाएगा, है ना। Where it is that? The 24th, huh?
24th.
अलग जगह सभी, लेकिन अंतर क्या होता है, बिंदु बिंदु समान। भगवान परमात्मा क्या है, सागर के समान है, आत्मा क्या है बिंदु बिंदु समान है। बिंदु उनके जो परमात्मा के जो गुण है बिंदु बिंदु समान, वो भी लुप्त अवस्था में रहते, बद्ध अवस्था में सब वो भी नहीं रहते। सो आउट ऑफ 64 क्वालिटीज डिस्क्राइब्ड इन द शास्त्र प्रोमिनेंट क्वालिटीज, वी हैव अनलिमिटेड क्वालिटीज, बहुत सारे असंख्य गुण है वो आवाज नहीं कर रहा। कंकार कंकार कभी ऐसे हम लोग मारते रहते हैं, हम लोग असंख्य गुण है भगवान के, उनमें से क्या क्या प्रमुख है, जो 64 गुण है वो प्रमुख है। 64 में से 50 गुण जीवों में विद्यमान होते हैं, लेकिन जीवों में बहुत ही अणु अणु रूप बिंदु बिंदु समान, इसे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी। लेकिन परमात्मा में सागर के समान वो गुण करते हैं, उसको हम लोग गणना माप 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 भी कर नहीं सकते। ठीक है, और कुछ दो आत्मा में दोनों भगवान के अंश है, लेकिन उनके भगवान को सेवा करने का जो भाव है वो अलग होता है, बस वही अंतर। ठीक है, और कुछ क्यों आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, वहां वो प्रेरणा कहां से आता है, आत्मा से ही आता है ना। भगवान को सेवा शरीर से नहीं की जा सकती, वो आत्मा की प्रेरणा से की जा सकती। ठीक है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं ना, वो आत्मा के लिए है, आत्मा का कार्य है। भौतिक शरीर कभी भी आत्मा ना हरे कृष्ण महामंत्र को जप नहीं कर सकता। जो भी आप भक्ति के कार्य कर रहे हैं वो आत्मा के कार्य है, अंततः सभी कार्य आत्मा के कारण ही हो रहे हैं। भौतिक शरीर तो मृत है, तो विशेष करके जो आध्यात्मिक कार्य जो है वो आत्मा के ही है। भौतिक कार्य भौतिक आत्मा के कार्य है, लेकिन भौतिक चेतना के प्रभाव में है, चेतना भौतिक प्रभाव है ना। तो ऐसे ही करते करते जाएंगे तो आप शरीर को भूल जाएंगे। उदाहरण दे दूंगा मैं, जब आप हमारे शरीर में मन रहता है तो कैसे होता है, उसका अनुभव होता है ना। तो उसको त्याग देने के बाद हमको राहत मिल जाता है, वैसे ये शरीर को त्याग दिया तो पूरी तरह से राहत मिल जाता है। लेकिन एक अवस्था है जब हम लोग भगवान के सेवा करते हैं, सेवा में इतना रत हो जाते हैं तो शरीर के उपस्थित होने के बाद भी उसका महसूस नहीं होता, पूरी तरह से राहत अवस्था में होता है, ये मल से मुक्त रहते हैं, ठीक है, उसको जीवन मुक्त सके। या यसे हरेर्दास कर्मणा मनसा गिरा निकला श्रुति अवस्था सु जीवन मुक्त से उच्च। तो रूप गोस्वामी बोलते कर्मणा यसे हरेर्दास कर्मणा मनसा गिरा, हमारे मन को शरीर को वाणी को बुद्धि को हम लोग भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा दिया तो इस शरीर में रहकर भी इस भौतिक जगत में भी रहकर भी आप मुक्त है। कैसे, वो एक वो रहता है नारियल का, नारियल रहता है वो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब अंदर भी वो नारियल जो रहता है वो पूरी तरह से शुद्ध उससे अलग हो जाता है। हालांकि वो हार्ड कवरिंग जो आवरण में ही है लेकिन फिर भी उससे अलग है, वैसे ही हम लोग भी इस शरीर में रहेंगे लेकिन उससे भी उससे ही अलग रहेंगे, उसका अनुभव हो जाएगा हमको। तो हमें और थोड़ा सेवा करना चाहिए, और थोड़ा जप करना चाहिए, और थोड़ा श्रवण करना चाहिए, लेकिन अभी श्रवण करते करते भी हम लोग आत्मा शरीर को बारे में दूर जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ना, तो वो 7 दिन और 7 रात को वो निरंतर उन्होंने भागवत को श्रवण किया, उनको भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, वो इतना मग्न हुआ, है ना। एक बार हम वहाँ एक विद्यार्थी मेडिकल स्टूडेंट के साथ कहीं जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, बीच में हम लोग वो गाड़ी में जा रहे थे, फ्यूल भरने के लिए हम लोग वो पंप में रुक गए, फिर तुरंत बारिश होने लगा, फिर हम लोग ऐसे भगवद गीता के फिलोसफी और चर्चा करने लगे, फिर ऐसे घंटों चला गया, 3-4 घंटा हो गया, बारिश बहुत बारिश होकर गया, हम लोग उसके बारे में ध्यान भी नहीं, तो ऐसे हो जाता, वो ही आत्मा था, है ना। तो आध्यात्मिक इसमें क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। और कुछ और प्रभुपाद जी बोले दूसरा आत्मा प्रवेश करता है, वैसे इस शरीर में भी कई सारे आत्मा होते हैं तो, लेकिन एक प्रमुख आत्मा होता है, डोमिनेंट सोल बोलते हैं ना, तो कई आत्मा होते हैं, जैसे मृत्यु के पैरासाइट्स होते हैं, है ना, वो अंदर ही बहुत सारे वर्म उसको सम डिसीजेस दे ना, इंटेस्टाइन में वर्म आ जाते हैं, वो क्या है, वो भी अलग अलग आत्मा है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे लोग मट्टी खाने के बाद इंटेस्टाइन में वर्म्स हो जाते हैं, क्या यू शुड नो नो दैट यूर डॉक्टर। तो वो जब हम लोग मल त्याग देते हैं तो उसमें कीड़े आते हैं, है ना, शरीर में भी बहुत सारे चीज है, बहुत सारे जीवाणु है, तो वैसे एक एक कोशिका भी एक एक जीवाणु के जीवाणु जीवाणु, लेकिन प्रमुख आत्मा होता है। उसके ऊपर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक रूम में हम लोग रहते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य जीव भी रहते हैं, वहां पर छिपकली है, वो है, वो है ना, वैसे शरीर में अन्य जीव भी है, और बहुत सारे आत्मा भी है, उसको काट दिए तो एक और आत्मा क्या करता है वहां पर, वो प्रमुख हो जाता है उसे। और औरा ब्रह्म तेज जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं उनका तेज बढ़ जाता है, क्योंकि वो है ना जो आत्मा का जो प्रभाव है वो फैल जाता है। इसके कारण इसका अर्थ होता है अभी उसका चेतना या क्या है ये भौतिक इच्छाओं से भौतिक गुणों के प्रभाव से आवृत हो गया है। ठीक है, और कुछ सभी लोग आ सकते हैं, वो उनके उनके उनको स्वतंत्रता है, वो आने का इच्छा करते हैं तो आ सकते हैं, है ना। क्या उससे कुछ लेना देना आध्यात्मिक जगत में कुछ लेना देना, इस भौतिक जगत में आने के बाद आपका क्या है, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मस्य, आप किस गुण से आप संपर्क में आते हैं उस गुण के अनुसार अलग अलग योनि प्राप्त होता है ना। आध्यात्मिक जगत का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर स्त्री है तो यहाँ पर पुरुष है तो वहां पर जरूरी नहीं कि वो गोपी नहीं बन सकते, वो स्त्री का स्वरूप स्वरूप है ना, वो यहाँ पर पुरुष लोग है ना, वो पुरुष स्त्री बन सकते हैं वहां पर आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत का स्वरूप यहाँ का भौतिक स्थिति में उससे कुछ लेना देना। जैसे हमारे आचार्य थे कौन रूप गोस्वामी, वो रूप मंजरी है आध्यात्मिक जगत में, रघुनाथ दास गोस्वामी राग मंजरी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी है, तब वो स्त्री है आध्यात्मिक जगत, से कुछ लेना देना नहीं। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत वो बहुत ही अलग है, ये भौतिक जगत पूरा विकृत प्रतिबिंब है। यहाँ पर अलग अलग हमारे इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत का नियम होते हैं ना, वहां पर आध्यात्मिक जगत का नियम अलग होते हैं, है कि नहीं। क्यों ये भौतिक जगत का नियम को आध्यात्मिक जगत को आप क्यों लागू करना चाहते हैं? नहीं, उसका साक्षात्कार हो जाएगा जब हम लोग उसको ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसको ही स्वरूप सिद्धि कहते हैं। जब हम लोग उसको समझ में आ जाता है हमारे स्थिति को, वही जीवन का परिपूर्णता है। समझ में आएगा, हम लोग कहते हैं ना भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित करना है, उसको प्राप्त करना है, उसको स्वरूप सिद्धि करना है, हमारा स्वरूप है वो नित्य स्वरूप। ठीक है, कुछ और संशय है? अरे को क्या क्या इसे किया कोई नहीं लिख सकता, इसमें असंख्य जीव है, एक एक का इतिहास लिखेंगे तो कितना, एक व्यक्ति का ही भौतिक जगत का इतिहास लिखेंगे तो इस पूरा समुन्द्र भी खाली हो जाएगा, और समुन्द्र को इंक बनाएंगे और जो भी वृक्ष है जो भी ये है वो लिखते जाएंगे तो भी आकाश भी कम पड़ेगा, इसको इतना इतिहास है जीव का। मूल क्या इच्छा है वो हम लोग अभी भी कह नहीं सकते किसका कैसे हुआ, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रहता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही जोर से भगवान के साथ ईर्ष्या करता है, कुछ ऐसा आतुरता रहता है भौतिक जगत को देखेंगे समझेंगे करके, वो आतुरता ही है ना। कुछ आतुरता के कारण आतुरता आतुरता समझ में आ रहा है। जीवात्मा अनु है, सुनो सुनो, जीवात्मा अनु है और भगवान विदु है, भगवान सब कुछ जानते हैं। वो जैसे एक इंजीनियर वो बिल्डिंग में किस कोने में क्या है उनको पता रहता है, क्योंकि उन्होंने डिजाइन किए बनाए हैं। जैसे इसलिए जो सृष्टिकर्ता होते हैं वो सब कुछ जानते हैं कहाँ पर क्या है करके, लेकिन जीवात्मा नहीं समझता है। तो उसको आतुरता आ सकता है, हाँ मैं जाके देखो क्या है करके, अनुभव करके देखो, तो ऐसे आ जाता है। जब यहाँ पर आ जाता है, कहा पुरुष प्रकृति स्तो ही भूते प्रकृति जान बना कारणम गुण संघस्य सदसत योनि जन्म, ये समझना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। पुरुष प्रकृति स्तो ही प्रकृति में स्थित होने के बाद वो गुणों के संपर्क में आ जाता है, जब गुणों के संपर्क में आ जाता है अलग अलग योनि में जन्म लेता है, समझ आएगा। इससे पहले वो क्या घास बनने का या मोर बनने का या हरिण बनने का या सुअर बनने का वो इच्छा नहीं करता है, प्रकृति के स्थित होने के बाद गुणों के संपर्क में आ जाता है। गुण विविधता उनको सृष्टि करते हैं, हम चर्चा कर रहे थे ना अलग अलग कपड़े का डिजाइन क्या कौन करता है, तीन गुण करते हैं। तो वहां मूलतः हम लोग इसको बहुत सारे भक्त लोग इससे विचलित हो गए, इस कारण में बहुत सारे इसको बहुत समस्या बना के रखा है वो लोगों, तो ये बहुत समस्या का वहां पर बहुत ही सूक्ष्म है। वो स्वतंत्रता है, उसको उपयोग करके कुछ आतुरता से इस जगत में आ सकता है, आने के बाद। लेकिन भगवान बोलते प्रकृति तो ही वो शब्द महत्वपूर्ण, यहाँ पर आने के बाद बहुत उसका ईर्ष्या भावना बढ़ जाता है जीवात्मा का, क्योंकि वहां पर तो शुद्ध है, जगत है, शुद्ध चेतना रहता है वहां पर, कोई भगवान को सब लोग प्रेम करते हैं वहां पर भगवान को, तो वहां पर तो ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आतुरता से आ सकता है ना। आप इच्छा करके जैसे यहां पर आए हैं आप आ सकते हैं, लेकिन आपको कोर्स नहीं किया जाएगा, ऊंचे लोगों में जाएंगे तो आपको पुण्य खत्म होते आपको फेंका जाएगा नीचे, क्षीण पुण्य मरते लोगों में शांति, वहां पर आपको वहां से फेंका नहीं जाएगा। इसका अर्थ है क्या है, यद्यत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमात्मा, तो वापिस नहीं आते इसका अर्थ क्या है, वापिस नहीं आते इसका अर्थ है आपको बाध्य नहीं किया जाएगा यहाँ पर जाने के लिए। आप इच्छा करते हैं तो आ सकते, क्योंकि आप इच्छा करके यहाँ पर आए हैं, है कि नहीं, आपको चॉइस है, लेकिन आपको फोर्स नहीं किया गया, जाओ वो करके कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन ऊंचे लोग में जाएंगे तो आपको फोर्स किया जाएगा। क्लियर, वो भी उल्लेख करते हैं वो लोग, यद्यत्वा निवर्तन्ते तो कैसे हम लोग यहाँ पर आ गए, क्यों नहीं आ सकते, स्वतंत्र तो है ना। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री ब्रह्मा है।